हरि ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महंतं गोविंद योगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदि दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दो मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, पहले पंक्ति हम बोलेंगे, उसके बाद आप लोग बोलना। शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव ॐ ॐ ॐ प्रेमपुरी आश्रम आयोजित सायंकालिक विशेष प्रवचन की इस श्रृंखला आज जून 16 तारीख 2012 आज से लेकर लगातार ये 28 तारीख तक शिवानंद लहरी के विषय में आधार पर ये प्रवचन ये श्रृंखला चलेगी। जैसे कि आप लोगों ने पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा, प्रवचन का विषय होगा आदि गुरु भगवान शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी के आधार पर प्रवचन करेंगे। भारतीय दर्शन शास्त्र में, भारतीय आध्यात्मिक क्षेत्र में आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारतीय आध्यात्मिक जगत के मुमुक्षुओं, श्रद्धालु, भक्त, जिज्ञासु, हम सब उनके ऋणी हैं। भारत भूमि उन महापुरुषों का बहुत ऋणी रहा और आगे भी रहेगा। शंकराचार्य जी ने हमारी वैदिक सनातन के उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके कृतियों को, उनके सिद्धांतों को, उनके भाष्य ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक पठन पाठन अध्ययन और श्रवण निरंतर हमसे होता रहे, यही भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी के प्रति हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि है। इसके बढ़कर और कोई श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम नहीं है। विशेष करके हम सन्यासी समाज तो उनके बहुत ऋणी हैं। वास्तव में शंकराचार्य जी कौन थे? सामान्य चिंतन करने वालों के लिए वह एक बहुत बड़े दार्शनिक हो सकते हैं, लेकिन हम उनको केवल दार्शनिक के रूप में नहीं देखते। दार्शनिक तो बहुत हुए हैं इस पृथ्वी में, बहुत दार्शनिक हुए हैं, बहुतों का नाम है। पूर्वीय दार्शनिक, पश्चिमी दार्शनिक, अरस्तु, कांट इत्यादि भी दार्शनिक ही कहते हैं उन लोगों को भी। लेकिन उनको कभी भी आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्मरण नहीं करते, और उनके अनुयायी भले उनको गुरु के रूप में स्मरण करें, लेकिन अवतार के रूप में तो स्मरण करते ही नहीं है। लेकिन हमारी संस्कृति सभ्यता रही है कि हम उन महान दार्शनिकों को, उन चिंतकों को साक्षात परमात्मा के अवतार के रूप में ही स्मरण करते हैं। साधारण मनुष्य अप्रतीत प्रतिभा के धनी होने मात्र से हम उनको स्मरण नहीं करते। हमने तो शंकराचार्य को माना है शंकरम शंकराचार्य। साक्षात भगवान शिव ही शंकराचार्य जी के रूप में अवतरित हुए हैं, यह हमारी मान्यता है। केशवम वादरायणम, साक्षात भगवान विष्णु ही वादरायण के रूप में अवतरित हुए हैं। ये दोनों का अवतार मानो ऐसा अवतार हुआ है कि दोनों ने सलाह करके, दोनों ने विचार विमर्श करके अवतार लिया, ऐसा लगता है। सूत्र भाष्य कृतो वंदे, क्योंकि भगवान विष्णु ने वादरायण के रूप में अवतार लेकर सूत्रों की, ब्रह्म सूत्रों की रचना की, तो भगवान शिव ने शंकराचार्य जी के रूप में अवतार लेकर उन सूत्रों की व्याख्या की है, भाष्य लिखा है। इसलिए हम दोनों को भगवान के ही रूप में स्मरण करते हैं, केवल दार्शनिक के रूप में स्मरण नहीं करते। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी का इतिहास देखो, ऐसा अद्भुत इतिहास भारत भूमि में मिलना बहुत मुश्किल है। छोटे से उम्र में, अपनी आयु में उन्होंने अद्भुत दार्शनिक संपदा का खजाना भारत भूमि को दिया। आध्यात्मिक चिंतन करने वाले मनुष्यों के लिए इतने खजाना दिए है, कभी खत्म न हो, उनके चिंतन की प्रक्रिया कभी समाप्त न हो, हजारों लाखों वर्ष तक भी वह संपदा कभी खत्म नहीं होगी। उस प्राचीन काल, आजकल की तरह शायद भौतिक साधनों से संपन्नता नहीं थी भारत भूमि में, पैदल यात्रा करते हुए पूरे भारत भूमि में अध्यात्म का प्रचार प्रसार और दार्शनिक ग्रंथों की रचना और ऐसे क्रांतिकारी समाज सुधार का उन्होंने काम किया है कि भारत भूमि कभी भी उनके इस देन से उऋण नहीं हो सकता है। बड़े विलक्षण प्रतिभा, ऐसे अवस्था में उनका अवतार हुआ है। भारत के इतिहास को हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जब अनात्मवादी शून्यवादियों का ऐसा बोलबाला था कि न तो कोई वैदिक कर्म हुआ करते थे, न वेद को प्रमाणित वेद को प्रमाण मानते थे, वेद और वैदिक सिद्धांत का ही अपलाप हो चुका था, वेद प्रतिपादित कोई यज्ञ याग आदि नहीं होते थे, बंद हो गए थे, और वेद प्रतिपादित जो हो श्री विग्रह भगवत विग्रहों के अर्चना पूजा ये सब खत्म हो गया था। सर्वम शून्यम सर्वम क्षणिकम, इस प्रकार का पूरे भारत भूमि में क्या विश्व में क्षणिक विज्ञानवाद और शून्यवाद का प्रचार ऐसा हुआ था। उस अवस्था में भगवान शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। इतिहास में बड़े सुधार भी हुए हैं और बहुत विकार भी हुआ है। एक पक्ष को सुधारते हैं तो दूसरा पक्ष बिगड़ जाता है। ये संसार का नाम है भाई। हमसे लोग पूछते हैं, महाराज ये कुछ लोग तंत्र मंत्र इंत्र करने वाले जो है बलि चढ़ाते हैं, काटमार करते हैं देवी देवताओं के नाम पर, क्या ये सही है? शास्त्र सम्मत है? हमसे पूछते हैं। है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन किस प्रयोजन के लिए ये सब है? शास्त्र सम्मत है, किस प्रयोजन के लिए, उस पर निर्भर करता है। कहते हैं भगवान बुद्ध के अवतार से पहले पूरे भारत भूमि में तंत्र शास्त्र का ऐसा साम्राज्य था, तंत्र विद्या का ऐसा साम्राज्य था कि हर व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए तंत्र का सहारा लेता था, तंत्र का आश्रय लेता था। और वो तंत्र ऐसा तंत्र था कि कापालिक तंत्र था, वामाचार तंत्र था। उसका ऐसा बोलबाला हो गया था, शाक्त संप्रदाय का जबरदस्त प्रचार था, और भैरव और शाक्त शक्ति की पूजा, दोनों उग्र देवता है, दोनों तामसिक हैं। क्योंकि यक्षानुरूप हो बलि, ये वेद का नियम है। जिस प्रकार के गुण से युक्त देवता है उसके उसी प्रकार की पूजा करो, उसी साधनों से पूजा करो। सात्विक देवता के लिए सात्विक साधन और सात्विक विधि से पूजा करो। देवता यदि राजसिक है तो उसको राजसिक साधन और राजसिक विधि से पूजा करो। देवता यदि तामसिक है तो तामसिक साधन और तामसिक विधि से पूजा करो। तो क्योंकि तंत्र में विशेष करके तमोगुण का प्रयोग करते हैं, मारण मोहन उच्चाटन त्राटन इत्यादि, उसी को अविचार कहते हैं। पहले ऐसा समय निकल गया था, प्रचार था कि पूरे समाज में अपने को शक्ति संचय करने के लिए सब इसी का आश्रय लेते थे और इसी के माध्यम से वो अपने आप को शक्तिशाली मानते थे। परिणाम यह होता था कि उस समय में बलि की बहुत बलि प्रथा, बहुत प्रचलन था, भैरव की उपासना करो और बलि चढ़ाओ, काली की उपासना करो बलि चढ़ाओ, बलि ही उपासना का पूर्ण अंग था। तो चारों तरफ काट मार, तो इस प्रकार के कृत्यों को रोकने के लिए भगवान नारायण स्वयं बुद्ध के रूप में अवतार लिया और उन्होंने सब रोकना शुरू किया कि ये बलि क्यों कर रहे हो, पूजा के नाम पर है, ये हिंसा क्यों कर रहे हो, प्राणी की हत्या क्यों करते हो, ये गलत काम कर रहे हो तुम लोग। तो सब लोगों ने बुद्ध को जवाब दिया, कौन कहता है हम गलत काम करते हैं, वेद ने लिखा है ये देख लो, वेद के अनुसार हम कर्म कर रहे हैं, वैदिक कर्म है, शास्त्र प्रमाण है, ऐसा जवाब देने लग गए। तो भगवान बुद्ध को यह कहना पड़ा कि हिंसा की आज्ञा देने वाला वेद वेद ही नहीं, वो शास्त्र नहीं हो सकता है, इसलिए वेद गलत है। तो एक प्रयोजन को लेकर उन्होंने ये बात कही थी कि वैदिक हिंसा को रोकने के लिए, बलि को रोकने के लिए उनको यहां तक कहना पड़ा, जिस शास्त्र की दुआई देते, जिस शास्त्र का प्रमाण देकर तुम इस प्रकार के काटमार में प्रवृत्त हो रहे हो तुम लोग, वो शास्त्र ही गलत है। परिणाम ये हुआ कि हिंसा तो रुक गया, तो शास्त्र ही गलत है कहा तो फिर वेद ही गलत हो गया। तो ऐसा समाज में ऐसे धारणा प्रतिष्ठित हो गई कि वेद गलत है, तब वेद के कहे हुए सारे कर्म गलत है। परिणाम हुआ कि यज्ञ बंद हो गए, मंदिर तोड़े गए, मूर्ति तोड़े गए, मंदिर मूर्ति सबकी पूजा आजा सब कुछ अर्चना सब बंद हो गए, सर्वम शून्यम सर्वम क्षणिकम, इस विषम परिस्थिति की सृजना हुई। तो भगवान शिव ने विचार किया, एक प्रयोजन को पूरा करने के लिए विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया, बहुत हिंसा का तांडव परिस्थिति को तो रोका, लेकिन परिणाम हुआ कि सारा वैदिक कर्म रुक गए, यज्ञ रुक गया, पूजा रुक गई ना। तो क्या करना चाहिए, तो फिर उसको पुनः प्रतिष्ठा करनी चाहिए। फिर शंकर भगवान शिव शंकराचार्य जी के रूप में अवतार लेकर कहा कि नहीं, वेद सही है, वैदिक कर्म सही है, इसका मतलब यह नहीं कि मार काट सही है, शक्ति की आवश्यकता है, शक्ति की उपासना करनी चाहिए, लेकिन शक्ति की उपासना करने की विधि दूसरी विधि भी है, ये समयाचार की प्रतिष्ठा आदि गुरु शंकराचार्य जी का देन है। तंत्र शास्त्र में, शक्ति उपासना में, तंत्र शास्त्र में समयाचार की उपासना की देन ये आदि गुरु शंकराचार्य जी का देन है। जहां कोई काट नहीं, मार नहीं, कोई बलि नहीं, कोई तामसिक का कोई अंश ही नहीं है, शुद्ध सात्विक विधि से उस शक्ति की उपासना करते हैं। तब राजराजेश्वरी ललिताम्बा की पूजा आरंभ करा दिया, तब उन्होंने सौंदर्य लहरी की रचना करके शक्ति की उपासना करनी हो तो इस विधि से करो, काटमार गलत है। तब पूरे भारत भूमि में भ्रमण करते हुए आदिगुरु शंकराचार्य जी ने सब जगह वैदिक कर्मों की पुनः प्रतिष्ठा की, वेद का उद्धार किया, वैदिक कर्म आरंभ कराई और सब टूटे हुए मठ मंदिरों का पूर्ण जीर्णोद्धार किया। उसी क्रम में आप लोग इतिहास पढ़ते हो, आज जो बद्री विशाल हम लोग पूजा करते हैं, दर्शन करने जाते हैं, उन्हें अनात्मवादी शून्यवादियों ने तोड़कर फेंक दिया था अलकनंदा में। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जाकर उस मूर्ति को खोजा और पुनः मंदिर की प्रतिष्ठा की। आज जो श्री विग्रह बद्री विशाल भगवान का है वो शंकराचार्य जी के हाथ से प्रतिष्ठा की हुई है, नहीं तो वो था नहीं, फेंक दिया तोड़कर ना। इसी तरह काठमांडू में जो पशुपतिनाथ भगवान है वह भी अनात्मवादी शून्यवादियों ने तोड़कर फेंक दिया था, खत्म था। शंकराचार्य जी गए, फिर पशुपति भगवान का पुनरुद्धार किया, जीर्णोद्धार किया, पुनर्प्रतिष्ठा की। आज इस बात को सर्वमान्य रूप में यदि माना जाए तो 1250 वर्ष हो गए, लेकिन उनके बारे में कुछ लोग पूरा 2400 वर्ष मानते हैं। भगवान बुद्ध से 100 वर्ष पश्चात शंकराचार्य जी का अवतार हुआ है ऐसा कुछ लोग मानते हैं, इसलिए लगभग 2400-2500 वर्ष हो गया शंकराचार्य जी का। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, 1250 तो सभी लोग मानते हैं, निर्विवाद है, पश्चिमी और पूर्वीय सभी दार्शनिक लोगों ने 1250 वर्ष पहले के इतिहास को, शंकराचार्य जी के इतिहास को माना है। ये शंकराचार्य जी का डीएनए है। बहुत प्रौढ़ ग्रंथों की रचना और भाष्यों की ग्रंथ की रचना, सारे उपनिषदों पर, एकादश उपनिषदों पर भाष्य ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र जैसे न्याय ग्रंथ पर भाष्य की रचना, लघु प्रस्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य जी के भाष्य की रचना हुई है, गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। हमारे दार्शनिक वेदांत दर्शन में इन तीन ग्रंथों को लघु प्रस्थान कहते हैं, प्रस्थान त्रय, तीन प्रस्थान। प्रस्थान का अर्थ होता है मार्ग, प्रस्थीयते इति प्रस्थान, जिसके माध्यम से, जिसके आधार पर हम चल सकें वो प्रस्थान। हमको पहुंचना है मोक्ष पर्यंत, और उस मोक्ष पर्यंत पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग क्या है, तो श्रुति, स्मृति और न्याय। उपनिषद श्रुति प्रस्थान है, गीता स्मृति प्रस्थान है, और ब्रह्मसूत्र न्याय प्रस्थान है। इसलिए शंकराचार्य जी बार बार हर जगह ये तीन शब्द का प्रयोग करते हैं, श्रुति स्मृति न्याय युक्ति, इस पर विचार करो। तो ये तीनों ग्रंथों पर उन्होंने भाष्य लिखा। इसके अलावा शंकराचार्य जी के अनेक मौलिक रचनाएं हैं, अपनी मौलिक रचनाएं, स्वतंत्र मौलिक रचनाएं। उपदेश साहस्री इतना बड़ा ग्रंथ है जिसमें 1000 उपदेश संकलित हैं, उस ग्रंथ का नाम ही है उपदेश साहस्री। 1000 उपदेश है मुमुक्षुओं के लिए। उसके बाद अनेक सिद्धांत बिंदु आदि हैं, 10 श्लोकी आदि हैं, दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम, विवेक चूड़ामणि, अपरोक्षानुभूति, देखो पंचीकरण, अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। ये सब तो दार्शनिक है, ये सब ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ है। इन सब को देखकर बहुत लोग ये कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी शुष्क वेदांती है, नीरस वेदांती है, दार्शनिक हैं लेकिन नीरस है, उनके दर्शनों में कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं। ये आक्षेप भी लगाते हैं व्यक्ति, लेकिन वो लोग एक बात भूल जाते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी के विचारों में, चिंतन में भक्ति रस का इतना ओतप्रोत है, इतना भरा हुआ है कि इतना सागर है भगवती जगदम्बा परांबा की उपासना के लिए शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी नामक 100 श्लोकों की सौंदर्य लहरी नामक एक ग्रंथ की रचना कर दी, जिसमें भगवती शक्ति का ही सारा सौंदर्यता सारा भाव भरा हुआ है और शक्ति को इस तरह प्रतिष्ठित किया है शंकराचार्य जी ने। मान लो कि शक्ति की उपासना के बिना किसी की अध्यात्म में गति हो ही नहीं सकती है, यहां तक कि किसी भी क्षेत्र में गति नहीं हो सकती है। जब सौंदर्य लहरी पढ़ते हैं, जगत जननी जगदम्बा परांबा के प्रति इतना भाव बढ़ जाता है, इतनी श्रद्धा इतनी विश्वास बढ़ जाता है। पहले मंगलाचरण श्लोक में ही उनकी प्रतिज्ञा है, सौंदर्य लहरी का पहला श्लोक, शिव शक्तिया युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम नचे देवो देवम नखलु कुशल स्पंदितुम अपि अतस्त्वाम आराध्यम हरिहर विरंच्यादिभिरपि प्रणंतुम स्तोतुम वा कतमकृत पुण्य प्रभवति। यहां तक कहा है कि हे भगवती, हे जगत जननी जगदम्बा परांबा, शिव जिसको परब्रह्म परमात्मा कहते हैं वह चैतन्य स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं। ज्ञान स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं। आनंद स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं। अद्वैत स्वरूप है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। शिव का मूल स्वरूप क्या है? सत चित आनंद अद्वैत। इसलिए उपनिषद में कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमेव्योमन। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, मुंडक उपनिषद में परमात्मा के लिए कहा शांतम शिवम अद्वैतम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। देख लो, सारे प्रपंचों का जहां जाकर उपशम हो जाता है, बाद हो जाता है, जितने भी प्रपंच हैं सारे नाम रूपात्मक प्रपंच जहां जाकर उपशम अर्थात बाद हो जाता है, उस बाधाधिष्ठान शिव कैसे हैं? शांतम शिवम अद्वैतम, ऐसे हैं वो। लेकिन ऐसे होने पर भी उस आनंद का अनुभूति तो हे देवी हे जगदम्बा आपके बिना कोई नहीं कर सकता है। ले भगवान शिव आनंद रूप हैं, लेकिन उनके जो स्वरूप का जो आनंद स्वरूपता है वो आनंद तो तभी छलकता है जब आपका सान्निध्य होता है, समुद्र शांत होता है, लेकिन समुद्र में तरंग तो तब आता है जब उसमें वायु का झोंका पड़ता है। थोड़ा सा वायु का आघात पड़े तो वो शांत पानी में तरंग निकलने लग जाते हैं। अब थाली में पानी भर के रखो, उसको छो नहीं, पानी स्थिर रहेगा, लेकिन जरा सा फूंक मारो है, जरा सा स्पर्श कर दो, फूंक मारते ही स्पर्श करते ही उस पानी में तरंग निकलते हैं। इसी तरह उस शिव के जो परम आनंद रूपता है वो आनंद रूप तब तरंगायित तो होता है जब शक्ति से युक्त होता है। इसी प्रकार से वो उसका जो ज्ञान स्वरूप है, उनके उस ज्ञान स्वरूप में तरंग तब आएगा जब आपका सान्निध्य प्राप्त होगा। किसके? देवी के। इसलिए शिव शक्तिया युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम, प्रभवितुम शक्त, किस काम को करने में समर्थ होगा वह शिव? कब? बोले जब शक्ति से युक्त होगा, जब आपसे युक्त होंगे तभी वो कुछ करने में समर्थ होगा, अन्यथा वो अस्तित्व रहेगा कर नहीं पाएगा। विद्युत तरंग का अस्तित्व है, विद्युत तरंग का अस्तित्व तो है, लेकिन वह विद्युत तरंग किसी भी तार में केबल में प्रवाहित हुए बिना वह पावर वह विद्युत कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वह तार भी केवल एक ही तार में प्रवाहित होकर कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए साइंस वैज्ञानिकों ने दो तार का प्रयोग किया, उन्होंने देखा दो तार का प्रयोग किया, एक ठंडा तार है और गर्म तार। गर्म तार में बिजली की उपस्थिति होने पर भी एक तार में उपस्थित हुआ हुआ वो बिजली कुछ नहीं कर पाएगा, और उसी के साथ एक ठंडा तार का कनेक्शन जोड़ देते हैं तो बिजली सब काम करती है। गर्म करना हो तो गर्म, ठंडा करना हो तो ठंडा, प्रकाश करना हो तो प्रकाश, जो काम का वो सब कर देगा। इसीलिए गर्म तार स्थानीय भगवान शिव, ठंडा तार स्थानीय भगवती जगत जननी जगदम्बा, दोनों का पैरेलल पर जब गमन होता है और कहीं जाकर दोनों का कनेक्शन होता है, संयोग होता है, तब वह क्रिएटिव होता है, तब वह काम करने में समर्थ होता है। कौन? पावर। इसी तरह शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुम न चेदेवो देवम कुशलं स्पंदितुम अपि। यदि शिव भी माने सत्ता भी, सत्ता और शक्ति ये दो अलग अलग चीज है, वो अस्तित्व में सत्ता अलग अस्तित्व है, शक्ति का अलग अस्तित्व है, लेकिन सत्ता और शक्ति का जो समन्वय है वही कार्य करने में सक्षमता को पैदा करता है। नचे देवम देवो कुशल स्पंदितुम अपि, यदि शक्ति से युक्त नहीं हुए शिव तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। होंगे, ऐसा नहीं कि उनको नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं कहा। शक्ति से युक्त न हो तो शिव नहीं रहेंगे ऐसा नहीं, क्योंकि सत्ता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। होना अलग चीज है, करना अलग चीज है, व्यक्ति होना अलग चीज है। घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति हो तो घर में है तो सही, लेकिन क्या घर में रसोई बना पाएगा वो बूढ़ा व्यक्ति? उसका अस्तित्व तो घर में विद्यमान है, लेकिन उससे कहो कि रसोई बनाओ तो वो तो निष्क्रिय है। होना अलग चीज है, करना अलग चीज है। वो कहेगा मैं हूं तो सही, लेकिन मेरे में करने की क्षमता नहीं है, कहेगा कि नहीं बूढ़ा व्यक्ति करने की क्षमता नहीं है तो तुम मर गया? बोले मरा तो नहीं हो, जिंदा हो। जिंदा है तो क्यों नहीं करता? बोले अब करने की क्षमता नहीं है। ये देख लो, यही तो शिव शक्ति है। शिव अस्तित्व में तो रहेंगे, लेकिन वो अस्तित्व क्रियाशील तब होगा जब शक्ति से युक्त होगा। यही कारण है कि सृष्टि के आरंभ से ही अतस्त्वाम आराध्य हरि हर विरिंच्यादिवीरपि। शंकराचार्य जी कहते हैं कि इसीलिए शिव भी आपकी आराधना करते हैं, विष्णु भी आपकी ही आराधना करते हैं, ब्रह्मा भी अपने की ही आराधना करते हैं, इंद्र भी आपकी आराधना करते हैं, सभी ने आपकी आराधना की है, तो फिर हम भी आपकी आराधना किए बिना कैसे रह पाएंगे? ये देखो, शक्ति की उपासना के लिए उन्होंने सौंदर्य लहरी इस तरह आरंभ किया 100 श्लोकों का। इसी तरह शिव की उपासना, शक्ति से युक्त शिव का स्वरूप कैसा है देख लो, शक्ति से युक्त शिव का स्वरूप कैसा है। शुद्ध शिव का स्वरूप तो पूरे वेदांत दर्शन में प्रतिपाद्य है, ध्यान देना आप लोग। शुद्ध शिव का स्वरूप तो सारे वेदांत दर्शन में प्रतिपादित है, उपनिषद ने वर्णन किया है, ब्रह्मसूत्र ने वर्णन किया है, गीता ने वर्णन किया है, दर्शन शास्त्र ने उस शुद्ध शिव के स्वरूप का वर्णन किया है, लेकिन शक्ति से युक्त हुए हुए शिव का स्वरूप कैसा है? उस स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए शिव भक्ति से वो तप्रोत, शंकराचार्य ने 100 श्लोकों का शिवानंद लहरी की रचना की, शिवानंद लहरी। अब यही कारण है कि देखो हमारे भारत भूमि में अनेक आचार्य हुए हैं, बहुत से आचार्य एक देव उपासनावाद से ग्रसित हैं, एक देव उपासना बहुतों की मान्यता है, वैष्णव खाली विष्णु को ही देवता मानेंगे और कहेंगे कि नहीं विष्णु की ही उपासना करो, कोई कृष्ण को देवता परमात्मा मानेंगे और कहेंगे कि केवल परमात्मा की उपासना करो, परमात्मा को छोड़कर और कृष्ण को छोड़कर और किसी का आश्रय में मत जाओ, कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने, यहां तक कह दिया है। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी ऐसे समन्वयात्मक आचार्य हुए उपासना क्षेत्र में, उन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए भी पूरा का पूरा भाव विभोर होकर अपने सारे हृदय को खोल दिया है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए ऐसे स्तोत्रों की रचना की है, अद्भुत है। विष्णु की उपासना के लिए, विष्णु भक्ति के लिए भी ऐसी ऐसी रचना है। कहां अद्वैत वेदांत के परम आचार्य भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर कहते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, अविनय विपनय अपनय विष्णु हो, हे विष्णु आप महान हैं, मैं क्षुद्र हूं, क्षुद्र होने के कारण ही हो सकता है कि मुझमें बहुत गलती हो, अविनय मेरे जीवन की जो उद्दंडता है, अविनयता है, मेरे मन के चलते ये समस्या आई है, अविनय अपनय मेरे जीवन की जो अविनयता है, ये दुर्गुण है और इसी अविनयता यही दुर्गुण के चलते मेरे आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, इसलिए सबसे पहले महाराज मेरी इस अविनयता को आप हटा दो। दमय समय मन, मेरी मन को आप कंट्रोल कर दो, रोक दो, मेरा मन बड़ा चंचल है और बहुत उच्छृंखल है। दमय मन समय विषय मृग तृष्णा, मैं बार बार समझा रहा हूं कि यह विषय केवल मृग तृष्णा है, लेकिन मेरा कहा माने तब ना, कौन आप भी समझाते हो अपने बच्चे को कि बेटा ये गलत काम है, आपका समझाना माने तब ना, मानता नहीं है। मृग को हजार समझाओ कि अरे हिरण हे मृग मरुभूमि में पानी तीन काल में नहीं हो सकता है, लेकिन आपका कहा वो माने तब ना, वो प्यास से छटपटा रहा है और दौड़ रहा है मरुभूमि की तरह। मृग कहता है कि तुम्हारे कहना मैं कैसे मानूं कि वहां पानी नहीं है, दिख रहा है मुझे इतना बड़ा सरोवर, देख लो तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां, महात्मा हजार कहें कि आनंद भीत अंदर है, महात्मा हजार बार कहें, हजारों महात्मा आकर कहें आनंद अंदर है, समझाएं तब भी तुम्हारे मन और इंद्रियां मानती है, है? मानती है। सुबह हुआ कि आमरस के कटोरी के तरफ मन दौड़ता है, आमरस नहीं बना है लेव जी, विषय मृग तृष्णा। वेदांतियों ने बार बार विषयों को तो केवल मृग तृष्णा कहा है, मृग की तृष्णा यानी मरुजल, ये विषय मृग तृष्णा, ये मरुजल, न कभी इन मरुजल के पानी से किसी का प्यास मिटा है, न किसी मरुजल के दिखने वाले दिखाई पड़ने वाले मरुजल से किसी का कोई प्रयोजन सिद्ध हुआ है, केवल मृग तृष्णा है। बार बार समझा रहे हैं लेकिन आपका न इंद्रिय मानता है न मन मानता है। आज एक सज्जन आकर कहने लगे हमसे, महाराज खूब बारिश हुई है, आज तो पकौड़ा खाने का दिन है। बोलो पकौड़ा भी किसका पता है? उन्होंने तो बोल दिया हमारे से, कांदे के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, वो क्या कहना। देखो आज तो पकौड़े खाने का दिन है, प्याज के पकौड़े खाने का दिन है, देखो क्या बारिश हुई है। ले जी विषय मृग तृष्णा, मान रहा है तुम्हारी इंद्रियां मान रही हैं, मान रहा है तुम्हारा मन। शंकराचार्य जी ने कहा कि मेरी इंद्रियां और मेरा मन भी नहीं मानता, कह तो मैं रहा हूं, समझा तो मैं रहा हूं, लेकिन नहीं मानता। और हमने कई बार सुना है महापुरुषों से और शास्त्र में कई बार पढ़ा है, आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, इसलिए शायद आप चाहो तो वह दमय है, समय मन दमय विषय मृग तृष्णा और भूत दयाम विस्तार है। हे भगवान संसार के सारे प्राणियों के प्रति दया का भाव विस्तार हो, सारे प्राणियों के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, मैत्री का भाव, मुदिता का भाव विस्तार हो। तारय संसार सागरता, जब तक जिए तब तक हृदय का भाव ऐसा हो कि सारे प्राणियों के प्रति दया का भाव हो, और जब प्रारब्ध समाप्त हो जावे तो सारी उपाधियों से मुक्त हो जाएं, और इन इंद्रिय और अंतकरण के बस में होने की जो पराधीनता है इन पराधीनताओं से हम मुक्त हो जाएं। तारय संसार सागरतः, आपकी कृपा हुए बिना हम संसार सागर से नहीं तर पाएंगे। क्या विष्णु भक्ति का भाव, छह श्लोक। आज वैष्णव लोग भी घर घर में, कट्टर वैष्णव भी शंकराचार्य जी की इस रचना का नित्य पाठ करते हैं। क्या समन्वय है। शंकराचार्य जी ने यह नहीं कहा कि हम अद्वैत वेदांती हैं तो क्या सगुण ब्रह्म की, सगुण परमात्मा की उपासना करें, हमको क्या जरूरत है। निर्गुण निराकार ब्रह्म में हमारी स्थिति है तो हम सगुण साकार में क्यों जाएं? नहीं। इसी तरह शक्ति उपासना, विष्णु गण कृष्ण शिव, देख लो क्या समन्वय कर दिया है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ऐसे सगुण ब्रह्म की उपासना में ऐसा समन्वय कर गए, ऐसा समन्वयात्मक आचार्य दूसरा नहीं हुआ है। दूसरा नहीं हुआ है। विष्णु को भी भगवान ही माना है शंकराचार्य जी ने, शिव को भी भगवान ही माना है, कृष्ण को भी भगवान ही माना है, देवी को भी भगवती ही माना है। वैष्णव लोग व्याख्या करते हो, कोई हो तो नाराज नहीं हो जाना। भगवान शिव को भगवान नहीं मानते। हाँ, भगवान शिव को क्या मानते हैं पता है? भगवान विष्णु के परम भक्त है। देख लो, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त है शिव। लेकिन शंकराचार्य जी के सिद्धांत में ऐसा नहीं कि विष्णु भगवान शिव के अनंत अनन्य भक्त हैं, ऐसा नहीं कहा। साक्षात परमात्मा है बस। देखो क्या उदारता है उनके चिंतन में, उनके विचारों में कहीं संकीर्णता नहीं दिखता है, दुराग्रता नहीं दिखती है, पूर्वाग्रता नहीं दिखती है। क्या समन्वय है। तो ऐसे जो आचार्य है उनकी ये रचना शिवानंद लहरी, इस पर विचार कर रहे हैं। तो हम जब काठमांडू नेपाल से आए तो हमारे चिमन भाई प्रिमपुरी आश्रम के कार्यकर्ता सक्रिय, उन्होंने फोन किया कि महाराज आप एक महीना के लिए हर साल आते हो तो इस साल जो है शाम के विशेष कार्यक्रम हम रखना चाहते हैं, विशेष प्रवचन आपका हम रखना चाहते हैं। हमने कहा रख लो भाई, तो किस विषय पर आप बोलेंगे? तो हम तो निर्विषय पर बोलने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्म तो निर्विषय है, कोई विषय है क्या? तो फिर भी कुछ न कुछ तो एक आधार तो रखना ही पड़ता है। तो हमने कहा तुम जो कहोगे वो हम उस पर बोलेंगे। तो हमारे शिष्य मोहनीश ने कई टॉपिक्स सुझाया था, उसमें शंकराचार्य जी के अनेक स्तोत्रों का लिस्ट उनको दिया होगा। ये चीज है, इन पर यहां खास विचार नहीं हुआ है प्रेमपुरी आश्रम में। तो इनमें से आप जिस स्तोत्र को या जिसको आधार चाहें उस पर विचार करें। तो हमने कहा शिव भक्ति से भरा हुआ एक ग्रंथ है आदिगुरु शंकराचार्य जी का, उस लिस्ट में शिवानंद लहरी ये नाम भी आया हुआ था। हमने कहा इसी पर प्रवचन करेंगे, चलो। तो वही यहां लिख दिया हमारे चिमन भाई ने, और उस पर आज हम विचार करने के लिए बैठे हैं। शिवानंद लहरी नाम भी बड़ा आनंद है। तीन चीज इस वाक्य में है, एक है शिव, दूसरा है आनंद, और तीसरा है लहर, लहरी। आनंद जब शिव से छलकने लगता है तो लहर हो जाती है। जो आनंद शिव में सीमित रहता है वह जीव का अनुभव गम्य नहीं होता। जीव का हम बात ये कह रहे हैं, हम लोग भ्रांति ना हो आप लोगों को, वैष्णवों के सामने एक बड़ी भारी समस्या है। शिव में आनंद है लेकिन जीव अलग ही रहेगा तभी शिव के आनंद का अनुभव कर पाएगा। शिव जीव की एकता हुई तो शिव के आनंद का जीव कैसे अनुभव, जीव ही नहीं रहा। ये बड़ी भारी समस्या है वैष्णवों को, इसलिए उनको द्वैतवाद कहते हैं। समझे कि नहीं? यदि आप लोग वैष्णव हो तो भी सिद्धांत तो अपना सिद्धांत तो आप लोग समझते ही होंगे। वैष्णवों को द्वैतवाद कहा जाता है, जीवात्मा और परमात्मा की एकता हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में। यदि शिव और जीव की एकता मान लो, दोनों जीव शिव ही हो गया, तो फिर शिव में रहने वाला जो आनंद है वो आनंद का अनुभव कौन करेगा? अनुभव करने वाला जीव तो खत्म हो गया, तब तो शिवानंद का अनुभव गम्य नहीं रहेगा। शिव में रहा जो आनंद, इसलिए जीव शिव से भिन्न ही रहना चाहिए ताकि बड़ा आनंद का अनुभव करे। हम इसका उत्तर दिया करते हैं, परमात्मा में जो आनंद है उस आनंद का अनुभव करने के लिए जीव को परमात्मा से भिन्न ही रहना पड़ेगा। तुम जो कह रहे हो इसका मतलब परमात्मा में जो आनंद है वो अपने में होने वाला आनंद परमात्मा को मालूम ही नहीं है, यही ना? परमात्मा आनंद स्वरूप है ये तो तुम कह रहे हो, मान रहे हो, और उस आनंद का अनुभव करने के लिए जीव को अलग रहना पड़ेगा तुम कह रहे हो, इसका मतलब परमात्मा को अपने में जो आनंद है उसका अनुभव नहीं है, उसके अनुभव करने के लिए उसको जीव बनना पड़ेगा। तो क्या ऐसा संभव है क्या? परमात्मा अपने में जो आनंद है उसका अनुभव करने के लिए वह जीव बने तब जाकर अपने में विद्यमान आनंद का तो अनुभव कर पाएगा, लेकिन जब तक जीव नहीं बनेगा अपने में रहने वाले आनंद का अनुभव नहीं कर पाएगा, ऐसा माना जाए क्या? है? परमात्मा जीव क्यों बना बोलो? परमात्मा जीव क्यों बना? वैष्णवों के हिसाब से द्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार तो ये परिभाषा करनी पड़ेगी कि अपने में विद्यमान जो आनंद है उस आनंद का उपभोग अनुभव करने के लिए वह जीव बना, ये कहना पड़ेगा। और हम ये कह रहे हैं, हम माने अद्वैत वेदांत ये कहता है, जीव शिव की एकता क्यों चाहते हो तुम? तो हमारा कहना यह है कि जीव जब तक शिव रूप नहीं होगा शिव में विद्यमान आनंद का अनुभव नहीं करेगा। अब वो लोग कहते हैं अनुभव करने के लिए अलग होना चाहिए, इसका मतलब है कि जो अलग नहीं होगा उसको अनुभव नहीं होगा अपने के आनंद का। इसका मतलब भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को या भगवान शिव को अपने भी जो आनंद है उसका उनको अनुभव नहीं है, क्या ये माना जाए? हाँ, अद्वैत में और ज्यादा आनंद का अनुभव होता है, जाने दो, इस पर हमारा दुराग्रह नहीं है। लेकिन वैष्णवों की परिभाषा के अनुसार शंकराचार्य जी यहां कह रहे हैं जब शिव में जो आनंद है, परमात्मा में जो आनंद है, यहां शिव शब्द का अर्थ तो परमात्मा ही ले लेना बाबा, परमात्मा में जो आनंद है उस आनंद को जब शक्ति से संपर्क होगा, शक्ति से युक्त होगा वो शिव, आप वेदांत की भाषा में कहो ब्रह्म में जो आनंद है वह जब माया से युक्त होकर माया में प्रतिबिंबित होगा तब वह सर्व अनुभव गम्य होगा, वह हृदय अनुभव गम्य होगा। हाँ, वो हृदय गम्य होगा, अन्यथा हृदय का बाध करना पड़ेगा तब जाकर। अब हृदय का जब बाध करके जो आनंद की अनुभूति होगी वो स्वरूप का आनंदों का अनुभव होगा, हृदय से आनंद का अनुभव जो होगा वह लहर होंगे, तरंग होंगे, तो वो तरंग ही है वो आनंद का छलक जा रहा, आनंद छलक रहा है, तो उसको, उस भाव को व्यक्त करने वाला ये स्तोत्र ग्रंथ आदि गुरु शंकराचार्य जी का शिवानंद लहरी। शिवानंद लहरी के पहले के कुछ श्लोकों को शंकराचार्य जी ने शिखरणी छंद में रचना की है। अब आप लोगों को छंद कितना बोध है, शिखरणी छंद, महिमा स्तोत्र तो आप गाते हो ना, वो शिखरणी छंद में, दुर्गा क्षमापन स्तोत्र आप लोग गाते हो कि नहीं, न मंत्रो नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा, शिखरणी छंद में, महिमना पारंते परम विदुषो यद्यस दृशी, शिखरणी छंद। इसी तरह पहले के कुछ श्लोके हैं शिवानंद लहरी के, शंकराचार्य जी ने शिखरणी छंद में गाया है, लिखा है, 100 श्लोक हैं शिवानंद लहरी में। हमारे वैदिक सनातन धर्म का यह नियम रहा है कि परमात्मा भी आनंद रूप है, मंगल रूप है, और आदि गुरु शंकराचार्य खुद शिवजी के अवतार होने के कारण वो भी मंगल रूप है, न शिव में अमंगल का स्पर्श हो सकता है, न शंकराचार्य जी में अमंगल का स्पर्श हो सकता है, और शिव की जो भक्ति है, स्तोत्र की रचना है, वो खुद ही मंगलमय है, अमंगल की कोई कल्पना नहीं हो सकती है। फिर भी शंकराचार्य जी ने पहला श्लोक मंगलात्मक, पहले श्लोक से मंगलाचरण की है। हमारे वैदिक परंपरा में यह रहा है कि हम कुछ भी करें मंगलाचरण करके करें, मंगलादीनी, मंगल मध्यानी, मंगलांतानी, कम से कम 3 बार मंगलाचरण करो, पहले मंगल करके कार्य आरंभ करो, फिर बीच में विश्रांति के समय में कार्य विश्रांति में मंगलाचरण करो, और कार्य की पूर्णता समाप्ति में भी मंगलाचरण करो, क्योंकि श्रेयांसी बहु विघ्नानी, श्रेय मार्ग में बहुत विघ्न आएंगे, वो सारे विघ्न ना आवे इसके लिए मंगलाचरण करो। मंगलाचरण करने का 2 प्रयोजन है, एक तो विघ्नों को रोकना, विघ्नों के प्रवेश से रोकना, दूसरा प्रयोजन है कि मंगलाचरण करके कार्य आरंभ करोगे तो कार्य सफलता में कार्यकर्ता को अहंकार नहीं होगा, क्या समझे? 2 प्रयोजन से मंगलाचरण करना है। मंगल परमात्मा है, उनका स्मरण करते हुए कार्य आरंभ करना ही मंगलाचरण है, और मंगलाचरण का यह है कि हे भगवान, मैं जो काम पूरा करने, जो काम आरंभ करने जा रहा हूं, मैं अल्पज्ञानी अल्पशक्तिमान होने के कारण ये पूरा होवे चाहे ना होवे मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन आप सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होने के कारण ये आरंभ किया हुआ कर्म आपके कृपा से तो निर्विघ्न पूर्ण हो सकते हैं, यदि आपकी कृपा न हो तो मुझे भरोसा नहीं कि ये निर्विघ्न पूरा हो। एक तो विघ्न बहुत हैं, दूसरा मैं अल्प शक्ति वाला हूं अल्पज्ञ हूं, तब इस अवस्था की परिपूर्ति तो आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। तो आपकी कृपा होगी तो विघ्न भी प्रवेश नहीं करेंगे, आपकी कृपा होगी तो आप सर्वशक्तिमान हैं इसलिए कार्य भी पूरा हो जाएगा, आपकी कृपा होगी तो आप सर्वज्ञ हैं इसलिए जो कार्य हम करते हैं उसमें विधि भी पूरी हो जाएगी, त्रुटि भी नहीं रहेगी। इन भावों को हृदय में धारण करते हुए कार्य आरंभ में मंगलाचरण करने की हमारी वैदिक परंपरा है, और स्वयं शंकराचार्य जी मंगलाचरण कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, खुद मंगल रूप होते हुए भी मंगलाचर रहे। तो गीता में जो बताया है यद्यताचरति श्रेष्ठ तत्तद् देवे तरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस तदनुवर्तते शिष्य शिक्षायै, शिष्यों को शिक्षा देने के लिए भी गुरु को मंगलाचरण करते हुए कर्म का आरंभ करे, अन्यथा फिर वो कर्म पूरा होने में होने पर अहंकार की वृद्धि होगी, मैंने किया, क्योंकि मंगलाचरण कर्म करने से कर्म आरंभ किया है तो भगवान ने पूरा किया, ये देख लो। अब कार्य पूरा नहीं हुआ तो फिर दुखी होगा रोएगा, मंगलाचरण करते हुए कर्म करोगे तो भाई ये भगवान की इच्छा है, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी होती पूरा हो जाता, उसकी इच्छा नहीं है तो पूरा नहीं हुआ रुक गया और क्या, तो हम क्या, हम तो शूद्र है, प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है, पूरा करना भगवान का काम है, तो ग्लानि नहीं होगी, पश्चाताप नहीं होगा। सबसे पहले भगवान शिव ने, शंकराचार्य ने मंगलाचरण में शिव और शक्ति को दोनों को संयुक्त स्मरण किया, संयुक्त केवल शिव का स्मरण नहीं शक्ति को भी। यह श्लोक शिव शक्ति संयुक्त मंगलाचरण का है। मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने कभी सुना हो नहीं सुना हो, महात्माओं ने बताया है, एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है, दूसरा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है, तीसरा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। नमः करते हुए कार्य आरंभ करते हैं तो उसको नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हैं, यानी नमः शब्द का अर्थ ही होता है कि इस कार्य में मैं प्रमुख नहीं हूं, इस कार्य में आप ही प्रमुख हैं, इसकी सफलता और असफलता में आपका ही योगदान रहेगा, मेरा कोई मेरी कोई भूमिका नहीं रहेगी, मैं ना ना मा ना मा मैं नहीं, ये जो कुछ है आप ही है। षटपदी में शंकराचार्य जी लिखते हैं ना, सामुद्रो ही तरंगा न क्वचन तारंगो समुद्र, देख लो सत्य भी भेदापगमे नाथ, ये श्लोक है, हे नाथ ये बिल्कुल सत्य है, पारमार्थिक सत्य है कि आप और मेरे बीच में रंच मात्र भी भेद नहीं है, सत्य भी भेद अपगम, सारे भेदों का अपगम है, सत्य भी भेद अपगमे नाथ फिर भी तवा अहम न मामकी नस्तम, मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे नहीं हो, क्या सुंदर बात, मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे नहीं हो। भक्त लोग तो यही कहते हैं कि भगवान तो मेरे भगवान है, शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान तुम मेरे नहीं हो, हाँ। क्या सुंदर बात है, ये न समझने वाले इस श्लोक का अर्थ नहीं कर पाते हैं, इसका भाव ये है, हे परमात्मा मेरे होने न होने में आप पर निर्भर करता है, लेकिन आपके होने ना होने में मुझ पर निर्भर नहीं करता है। क्या समझे? इसका अर्थ यह है, मेरे होने न होने में आप पर निर्भर करता है। आपकी कृपा है, आपका अस्तित्व है, आपका अनुग्रह है, आपकी कृपा है, तब मैं हूं। लेकिन इसका उल्टा व्यतिरेक नहीं है, मेरी कृपा है तब आप हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, जीव की कृपा होकर परमात्मा है कि परमात्मा की कृपा से जीव है? तब क्या हुआ? शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं? वैष्णव लोग इसका गलत अर्थ कर देते हैं। तुम मेरे हो कहो, भक्त ये कहे कि तुम मेरे हो, भगवान मेरे हैं। मेरे हैं का मतलब क्या? मेरे हैं का मतलब हो गया कि भगवान छोटा हो गया, मैं बड़ा हुआ, तुम मालिक हो गए ना। तुम किसी भी वस्तु को ये मेरा है कब कहते हो? बोलो, हैं? बोलो ना, किसी भी वस्तु को ये मेरा है कब बोलते हो? जब उस पर आधिपत्य है, उस पर पूरा हक है, उस पर पूरा स्वामित्व है, तब ना तुम कहोगे कि ये मेरा है, हैं? तो उस वस्तु तुम पर आश्रित हुआ कि नहीं, तुम्हारे पर आधारित हुआ कि नहीं, हैं? क्या परमात्मा ऐसा है? तभी तो शंकराचार्य जी कहते हैं, हाँ, सत्य अपि भेदापगमे नाथ। ये बात बिल्कुल सत्य है, वेदांत दृष्टि से विचार करें तब आपके और मेरे बीच में भेद नहीं। तत्व दृष्टि से विचार करें तो महाकाश और घटाकाश में कोई भिन्नता नहीं है। फिर भी घट उपाधि के चलते घटाकाश महाकाश के आश्रय में है, महाकाश पर आश्रित है घटाकाश, लेकिन घटाकाश महाकाश घटाकाश पर आश्रित नहीं है। क्या दुनिया में सब घटाकाश मिलकर एक महाकाश बना है, ऐसा है क्या? इसका मतलब घटाकाश नहीं रहेंगे तो महाकाश ही नहीं रहेगा क्या? हैं? घटाकाश क्या बोल रहा है? महाकाश से बोलो, तब जाकर ये स्तोत्र का अर्थ बुझो, समझोगे तुम लोग। घटाकाश महाकाश से क्या कह रहा है? प्रार्थना कर रहा है घटाकाश, मान लो महाकाश से, हे महाकाश सत्य भी भेदापगमे। ये वास्तविक सत्य है कि तुम्हारे और मेरे में कोई भिन्नता नहीं है, फिर भी ये घट उपाधि के चलते आप में और मेरे में भिन्नता हो गया है, नहीं हो गया, क्योंकि आप बड़े हो गए मैं छोटा हो गया, किसके चलते? उपाधि के चलते। इसीलिए मैं तुम्हारा हूं, यानी मेरे होने में तुम्हारा होना जरूरी है। मेरे होने में कौन बोल रहा है? घटाकाश किससे? महाकाश से। इसी तरह कौन बोल रहा है? जीव किससे? परमात्मा से। ये अंतकरण देह उपाधि न रहे तब तुम्हारे और मेरे में कोई भेद नहीं। अंतकरण सूक्ष्म स्थूल शरीर उपाधि आदि न रहे तो आप में और मेरे में कोई भिन्नता नहीं है, फिर भी इन उपाधियों के चलते आप में और मेरे में भेद खड़ा हो गया, आप महान रह गए मैं क्षुद्र हो गया। तवाहम न माम की नस्तुम, आप मेरे हैं, तब अहम मैं तुम्हारा हूं, लेकिन आप मेरे नहीं हैं। क्या मैं मर जाऊं तो आप रोओगे? कौन बोल रहा है? जीव किससे? भगवान से। क्या कह रहा है? क्या मैं मर जाऊंगा तो आप बैठे बैठे रोओगे? बोलो, जीव मरेगा तो परमात्मा बैठे बैठे रोएगा है? तुम लोग बोलो ना भाई, नहीं रोएगा? तुम क्यों रोते हो? अब परमात्मा मरेगा तो तुम रोओगे ही रोओगे, नहीं रोओगे? हैं? अब परमात्मा नहीं मरेगा तो तुम मरोगे? ये किसने कह दिया तुमको परमात्मा नहीं मरेगा तो तुम मरोगे? हैं? महाकाश का नाश होगा कि नहीं? तो महाकाश का नाश नहीं होगा तो क्या घटाकाश का नाश होगा? घट उपाधि का नाश होगा, घटाकाश का नाश नहीं। तुम नहीं समझते हो इसलिए तुम कह देते हो कि परमात्मा नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। अरे भाई, परमात्मा न रहना संभव ही नहीं, इसलिए तुम्हारा न रहना भी संभव नहीं है। सत्य विभेद अपगमे नाथा तव अहम न मामकी नस्तुम। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। सामुद्रोही तरंग, कोई भी व्यक्ति तरंगों को देखता है और पूछता है कि यह तरंग किसका है, तो हर व्यक्ति यही कहता है कि समुद्र का तरंग है। जबकि तरंग और समुद्र में कोई रंच मात्र भी भिन्नता नहीं है। समुद्र और तरंग में रंच मात्र भी भिन्नता न होते हुए भी कहने के समय में कहने वाला क्या कहता है, ये तरंग किसका है? पूछने पर उत्तर क्या देता है, समुद्र का है। और कोई पूछे समुद्र किसका है? है? समुद्र किसका है? तो कोई उत्तर देता है कि तरंग का है। तरंग को तो समुद्र कहते हैं, समुद्रे भव समुद्र, लेकिन समुद्र को कोई तारंग कहेगा? तारंग माने तरंग से होने वाला है क्या समुद्र? नहीं है। सत्य विभेद अपगमे नाथ तवाहम न मामकी नस्तम। सामुद्रो ही तरंग न क्वचन तारंगो समुद्र। बोलो, समुद्र तारंग नहीं है, तरंग सामुद्र है, लेकिन समुद्र तारंग नहीं। समुद्र तरंग से पैदा नहीं हुआ, तरंग पर जी नहीं रहा है, तरंग पर आश्रित नहीं है। बात समझ गया कि नहीं? इसी तरह जीव परमात्मा का है, लेकिन परमात्मा जीव का नहीं है। परमात्मा का है इसलिए जीव पर परमात्मा का अनुशासन चलेगा। परमात्मा जीव का नहीं है इसलिए क्या जीव परमात्मा पर अनुशासन करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि परमात्मा जीवात्मा का नहीं है इसलिए जीवात्मा का अनुशासन नहीं चलेगा। ये भक्ति भाव है, द्वैताद्वैत भक्ति भाव। मूल रूप में अद्वैत होता हुआ भी औपाधिक भेद को स्वीकार करके शंकराचार्य जी ये भाव व्यक्त कर रहे हैं शिवानंद लहरी के माध्यम से। पहला श्लोक बड़ा सुंदर है, मंगलाचरण। कलाभ्याम चूड़ालम, कलाभ्याम चूड़ालम, कृत शशि कलाभ्याम निज तप, फलाभ्याम भक्तेषु प्रकटित फलाभ्याम भवतु मे, शिवाभ्याम अस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्याम हृदि पुनर् भवाभ्याम आनंद पुरदनुभवाभ्याम नतिरियम इयम नति। ये मेरा नमस्कार है। इयम नति, मेरा यह नमस्कार है। किसके प्रति नमस्कार है ये तुम्हारा? कलाभ्याम चूड़ालम कृत शशि कलाभ्याम निज तप फलाभ्याम भक्तेषु। हा, कलाभ्याम चूड़ाला, ये भ्याम शब्द दो वचन, समझे कि नहीं? ये भ्याम जो कहा है ना, दो के लिए कहा जाता है। राम कृष्णाभ्याम नमः, राम और कृष्ण दोनों को एक ही बार नमस्कार करना होगा तो भ्याम लगाना पड़ेगा है। तो एक व्यक्ति ने सोचा, पूछा हमसे, महाराज ये राम तो राम हो गए, कृष्ण कृष्ण हो गए, ये भ्याम क्या है? उमा महेश्वराभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। पूछा है उमा और महेश्वर, तो उमा तो उमा हो गई, महेश्वर महेश्वर हो गए, ये भ्याम क्या है महाराज? लक्ष्मी तो लक्ष्मी हो गई, नारायण नारायण हो गए, ये भ्याम क्या होता है? है समझ में आया कि नहीं? भ्याम क्या है? दोनों को जोड़कर है, इसलिए नारायण। यदि केवल नारायण को नमस्कार करनी हो, नारायणाय नमः, लक्ष्मी नमः, ये लक्ष्माय नमः नहीं होता है, लक्ष्मी नमः। और दोनों के एक साथ बोलना हो तो लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। नारायण का आय भी गया, लक्ष्मी का अय भी गया, लक्ष्मी नमः नारायणाय नमः, दोनों जाकर एक आ गया। क्या आ गया? भ्याम। ये भ्याम दोनों को जोड़ने वाला है, भ्याम दोनों को अलग करने वाला नहीं, तोड़ने वाला नहीं है, भ्याम दोनों को जोड़ता है। भ्याम क्या है पता है तुमको? हंसने की बात कर दूं, है शादी करते समय, तुम लोगों ने तो शादी किया होगा ना, किया कि नहीं? शादी किया है ना? हमको तो पता नहीं भाई। वर और वधु है ना, लड़का और लड़की दोनों के स्वयंवर के समय में दोनों के कंधे में एक कपड़ा होता है कि नहीं, और बीच में जो गांठ होती है ना उसका नाम व्याम। क्या है? बीच में एक गांठ लटकती है कि नहीं? वर और वधु के बीच में एक गांठ लटकती है कि नहीं? दो कपड़ों के छेड़ा बांध देते हैं ना जनेऊ सुपारी पैसा डालकर, उस ग्रंथि का नाम भ्याम है। मतलब क्या हुआ? वो दोनों को जोड़ रहा है। शादी हो जाने के बाद वो गांठ फूका खोल दिया जाता है, लेकिन जब तक शादी नहीं हुई तब तक क्या हुआ? दोनों को उसने जोड़ रखा। ना लड़के के कंधे से कपड़ा हटेगा, ना लड़के के कंधे से हटेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। उसके कंधे में भी वो ऐसा रहेगा, उसके में भी ऐसा रहेगा, वो सब कुछ उसको संभालेंगे, नहीं गिर ना जाए कहीं, क्योंकि वो भ्याम है ना दोनों को जोड़ने वाला। उसके बाद तो गांठ कपड़े में लगाई थी, गांठ पड़ गया हृदय में। गांठ लगाया था कहां? कपड़े में। पड़ गया, पड़ने गया कहां? गांठ ग्रंथि कहां पड़ गए? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृथा छूटत कठिनाई। तुलसीदास जी ने लिखा है जड़ और चैतन्य की ऐसी गांठ पड़ गई, हालांकि जड़ और चैतन्य की गांठ पड़ना संभव ही नहीं है, यद्यपि मृषा फिर भी छूटत कठिनाई। और गांठ पड़ गया, अब क्या करोगे? मरते दम तक वो गांठ रहती है कि नहीं? मेरा पति, मेरी पत्नी, देव जी, वो गांठ मरने के बाद भी नहीं छूटता। मरते दम तो क्या, मरने के बाद भी नहीं छूटता है बाबा। फोटो लटका कर कहता है मेरी पत्नी, फोटो लटका कर कहता है मेरा पति, गांठ फेर भी है, है? देव जी, उसी का नाम क्या है? भ्याम। ये व्याकरण का शब्द है, इसलिए अर्धनारीश्वर भगवान शिव की स्तुति में नमः शिवाभ्याम, नमः शिवाभ्याम, नव यौवनाभ्याम, परस्पराश्लिष्ट बपुरधराभ्याम। ये इसका मतलब आधा पार्वती आधा शिव, दोनों को मैं नमस्कार कर रहा हूं। परस्परा बपुरधराभ्याम, आधा शरीर शिव जी के, आधा पार्वती के। ये नागेंद्र कन्या दिशकेतनाभ्याम। तो यहां भ्याम शब्द से कलाभ्याम, दोनों की कलाओं में, कलाभ्याम चूड़ालंकृत। कला शब्द का दार्शनिक अर्थ बहुत है, वेद प्रतिपाद्य तत्व को नाम कला कहते हैं। वेद प्रतिपाद्य तत्व, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, द्वारा उपनिषद द्वारा जिस तत्व का प्रतिपादन किया है उसी को कला कहते हैं। इधर शिव है तो उधर ब्रह्म विद्या है। शिव में ब्रह्म है, परमात्मा ब्रह्म, और शक्ति में ब्रह्म विद्या। ब्रह्म और ब्रह्म विद्या दोनों अलग नहीं हो सकते, इसलिए कालिदास जी ने कहा वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वाणी और अर्थ दोनों साथ साथ रहते हैं, ऐसा नहीं कि अर्थ कहीं रहे और वाणी कहीं रहे। इसी तरह ऐसा नहीं कि शिव कहीं रहे और शक्ति कहीं रहे, हाँ शिव शक्ति एक ही साथ रहते हैं। चूड़ालंकृत शशि कलाभ्याम, शशिकला, शशिकला माने चंद्रमा, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, और उसकी कला माने एक अंश, सोलह में से एक अंश, एक अंश माने द्वितीय का अर्धचंद्र को शशि कला, पूर्ण चंद्र को शशि, अर्धचंद्र को शशि कला। जिनने सिर में चुड़ालम, चुड़ा अलंकृत सिर के, सिर में दोनों की जटा है, वो पार्वती की भी जटा है और शिव जी की भी जटा है, दोनों ने जटा में चंद्रमा को धारण किया है। चंद्रमा को शशि क्यों कहते हैं, ये तो पुरानी मान्यता है, आप लोग भले कुछ भी कहो, एक मान्यता है कि चंद्रमा के बीच में खरगोश रहता है ना। आजकल तो कहते हैं एक बूढ़ी माई चरखा काटती है, ऐसा कहते हैं ना। पूर्णिमा के चंद्रमा को देखो, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को, एक बूढ़ी माई वो चंद्रमा के बीच में बैठकर चरखा चला रही है, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन पुरानी मान्यता है कि उसके बीच में शशि रहता है, शशि माने सासलो, ससलो खरगोश, खरगोश को नाम सस कहते, सस, और सस संस्कृत शब्द है, और उस सस से गुजरातियों ने ससलो कर दिया, तो मूल संस्कृत से ही लिया है गुजराती शब्द ससलो। तो चंद्रमा के बीच में वो सस रहता है, ससलो, तो सस रहने के कारण उसका नाम शशि हो गया। शशि का एक अंश कला, शशि कला जिन्होंने अपने सिर के मुकुट में धारण किया हुआ है, ऐसे दोनों को नमस्कार करता हूं। कलाभ्याम चूड़ालंकृत शशि कलाभ्याम निज तपह फलाभ्याम, दोनों एक दूसरे के तप के फल है। शिव पार्वती के तप के फल है, तो पार्वती शिव के तप के फल है। पार्वती को पाने के लिए भगवान शिव ने घोर तपस्या की है, और शिव को पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की है, और कठोर तपस्या करने के कारण पार्वती ने शिव को पाया और शिव ने पार्वती को पाया, दोनों क्या हो गए, तप फलाभ्याम, ये तपस्या का फल है। समझे नहीं, शंकराचार्य जी ने उस प्रसंग का स्मरण किया, आप लोगों को पुराण का प्रसंग मालूम ही है कि पहले भगवान शिव की पत्नी का नाम था सती, सती दक्ष पुत्री थी और शिव को बहुत प्यारी थी, और दक्ष प्रजापति के द्वारा उद्दंडता करने का परिणाम यह हुआ अंत में कि सती का शरीर नष्ट हो गया, और जब शिव को पता चला कि सती का शरीर खत्म हो गया तो आगे का प्रसंग आप लोगों को मालूम है कि शरीर को ही वो साथ में लेकर चलते रहे, कई दिन तक तो वो शरीर, मृत शरीर को ही ढोते रहे, पुराण के प्रसंग है। अंत में देवताओं ने विचार किया कि ये तो बहुत विडंबना हो जाएगी, भगवान शिव तो सती के शरीर के अलावा और किसी का चिंतन ही नहीं कर रहे, उनका ध्यान तो केवल उसी में जा रहा है, तो सब ने विष्णु को कहा और विष्णु ने कहा कि ठीक है अब कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान को शिव को पता ही नहीं चला, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्रों से चक्र से सती के 52 टुकड़े कर दिए उस मृत शरीर के। 52 52 शक्तिपीठ हुए, जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां वहां आज चैतन्यमय, क्योंकि सती का शरीर आपका और हमारा जैसा शरीर नहीं था। यदि आप आम का शरीर होता तो शिवजी लेकर चलते और तभी सुरक्षित रहता क्या? सड़ जाता, कीड़े पड़ते कि नहीं? कई वर्षों तक लेके घूमे कीड़े नहीं पड़े, क्यों? वो तो चिन्मय बपू था। चिन्मय बपू होने पर भी, क्योंकि उसके प्रति उनकी आसक्ति को हटाने के लिए भगवान विष्णु ने उनके टुकड़े कर दिए और जहां जहां जो जो अंग गिरा वो एक एक शक्तिपीठ हो गया। तो 52 शक्तिपीठ पुराण में प्रसिद्ध है। उसके बाद भगवान शिव ने संकल्प कर दी, अब मैं संसार में कुछ नहीं करूंगा, पर जाके कैलाश में बैठ गए और तपस्या में लग गए और कठोर तपस्या की। और उनके तपस्या करने का परिणाम यह हुआ, इधर वृत्रासुर या एक असुर, उसने वरदान मांग ली थी कि मेरी मृत्यु हो तो शिवजी के पुत्र से हो, नहीं तो ना हो। अब वो ये जानता था कि शिवजी ने प्रतिज्ञा कर ली है कि अब जीवन में दूसरी शादी नहीं करूंगा, जाके कैलाश में तपस्या में लग गए और उनका अब शादी नहीं होगी, सती मर गई और दूसरा शादी नहीं करेंगे, पुत्र नहीं होगा तो मुझे कोई नहीं मारेगा, तो मेरी यदि मृत्यु हो तो शिव पुत्र से हो, नहीं तो ना हो। परिणाम ऐसा उद्दंड हो गया कि सारे देवी देवताओं को सताने लग गया। तो सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लग गए कि भगवान शिव ये तो ऐसा हो गया, उसने ऐसा वरदान मांग लिया, अब आपको शादी करना पड़ेगा और एक बेटा पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर इसी को मारेगा, तब जाकर हमको शांति मिलेगी। भगवान शिव तो कठोर तपस्या में लगे थे, क्या करें? तो उन्होंने उसी संकल्प से तपस्या की। परिणाम क्या हुआ? वो सती पर्वत की पुत्री होकर पैदा हुई। मैना और पर्वत के संयोग से पर्वत की पुत्री होकर पैदा हुई। तो कहा कि मेरी पत्नी तो है ही नहीं, अब क्या करें? बोले नहीं नहीं, आप जब से सती के देह त्याग के पश्चात तपस्या करने लग गए तब से लेकर आज तक सती इधर पार्वती के रूप में पैदा हो चुकी है, आपके तपस्या का फल है। पुराण में यह वर्णन है, इसलिए यहां शंकराचार्य जी ने उस प्रसंगों को स्मरण किया। पार्वती जो है वह शिव तप का फल है। और इधर पार्वती ने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं विवाह करूंगी तो शिव से करूंगी, शिव के अलावा किसी से नहीं। और बहुत समझाया गया कि तुम उसके ब्याह शादी करने का प्रतिज्ञा मत करो, उसके पास न रहने का घर है न खाने की। शिव हापुस आम खाते हैं कि नहीं है? बोलो, तुम्हारे हापुस आम की अपेक्षा तो धतूरा खावे भांग धतूरे, रहे काज सभी काम पूरे, ना उनका भोजन ढंग का है, ना घर कहीं है उनका, स्मशान उनके संपत्ति क्या है, वैभव क्या है? स्मशाने स्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा चिता भस्मा लेप सृगपि निर्करोटि परिकर अमंगल्यम शीलम। और ऐसे से तुम शादी करने की बात करती हो पार्वती, ऐसा मूर्खता मत करो, इससे अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। पार्वती ने नहीं माना। पार्वती ने आगे जवाब दिया, भगवान का ये सोल स्वभाव सब कुछ अमंगलमय होता हुआ भी स्मर्तृणाम परमम मंगलमय। शिव भांग खाते हैं इतने स्मरण कोई करे ना उसका मंगल हो जाएगा। शिव अशुद्ध भस्मी लगाते हैं इतने स्मरण करे तो उसका जीवन शुद्ध हो जाएगा। स्मरण करने वालों को परम मंगल होता है, इसलिए मैं शिव को छोड़कर और से शादी नहीं करूंगी। तपस्या करने लगे। कहते हैं पार्वती पहले बहुत काली थी, मेरे जैसे बहुत काली थी। जंगल में तपस्या करने लग गई, शिव जी गए घूमते हुए, देखा शिव जी बहुत गोरे, कर्पूर गौरव है ना। शिव जी कैसे हैं? गोरे हैं, कर्पूर गौरव, और पार्वती काली। शिव जी ने कहा कि ऐसे काली से कोई शादी करता है? तू ये बहुत काली है, नहीं करूंगा तेरे से शादी, चल पड़े। गोरी होती तो फिर भी मैं सोचता, ऐसे काली से नहीं करूंगा। तो पार्वती ने जब ये सुना तो उनको बड़ा दुख लगा। उन्होंने कहा कि तपस्या करके भी मैं गोरी होकर भी शिव जी से शादी करूंगी। तो घोर का कब तपस्या करने लग गई, कठोर तपस्या करने लगी। और उस तपस्या, क्योंकि शिव गोरे थे, पहली बार पार्वती ने देखा गोरे हैं, तो उनके गौर वर्ण का ही उन्होंने हृदय में ध्यान किया और तपस्या किया। करते करते पार्वती गोरी हो गई एकदम। तब उनकी मां ने उसका नाम रख दिया, अरे तू तो बड़ा काली थी अब तो गोरी हो गई, तब उसका नाम पड़ गया गौरी। तो शिव ने देखा ये काली थी अभी गोरी हुई कि नहीं जरा देखें तो सही। तो आए देखा तो बहुत गोरी है, वाह अब ठीक है जोड़ी मिल गई। तो भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया। मतलब क्या? पार्वती के तप का फल शिव और शिव के तप का फल पार्वती। इस परस्पर शिव का पार्वती के परस्पर की तपस्या से परस्पर में उनकी प्राप्ति हुई है। इसलिए कहा निज तप फलाभ्याम, हम उसको नमस्कार करते हैं जो अपने तपस्या के फल के रूप में शिव को पार्वती की प्राप्ति, पार्वती को शिव की प्राप्ति हुई है, ऐसे दोनों को मैं नमस्कार करता हूं। और आगे कहा भक्तेषु प्रकटित फलाभ्याम, और भक्त भी उनकी इसी तरह तपस्या करता है, भक्ति करता है, तो उनके हृदय में उस भक्ति के फल के रूप में वह शिव और पार्वती संयुक्त रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए भक्तों के हृदय में भक्ति के फल के रूप में प्रकट होने के कारण उनको कहा भक्तेषु प्रकटित फलाभ्यम भवतु मे इयम नति भवतु, यह अन्वय करना। भवतु माने मेरा यह नमस्कार होवे। शिवाभ्याम अस्तोक, अस्तोक स्तोक माने थोड़ा, अस्तोक माने पूरा, स्तोक माने थोड़ा, अस्तोक माने जो थोड़ा नहीं है वो पूरा। त्रिभुवन शिवाभ्याम हृदि पुनर, दोनों त्रिभुवन शिवाभ्याम, अस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्याम, तीनों लोक में सबके प्रति पूरे के पूरे किसी को छोड़े बिना पूर्ण रूप में तीनों लोक का कल्याण करने वाले दोनों होने के कारण क्या हुआ? अस्तोकम त्रिभुवन शिवाभ्याम, शिव माने कल्याण, दोनों कल्याणकारी हैं तीनों भवन में। हृदि पुनर्भवाभ्याम, ये दोनों भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं। शिव और पार्वती कहां प्रकट होते हैं? भक्तों के हृदय में प्रकट होने के कारण हृदि पुनर्भवाभ्याम आनंद स्फुरत अनुभवाभ्याम, हृदय में किस रूप में प्रकट होते हैं? जटाजूट के सहित नहीं, आनंद स्फुरत। पार्वती भी हृदय में, भक्तों के हृदय में यदि प्रकट होंगी तो वह आनंद के रूप में, और शिव भी यदि प्रकट होंगे तो आनंद के रूप में ही हृदय में प्रकट होंगे। ऐसे हृदय में अभिव्यक्त होने वाले उस परमात्मा यानी शिव और शक्ति को संयुक्त रूप में मैं ये नमस्कार करता हूं। ये नमस्कारात्मक शिव शक्ति की संयुक्त मंगलाचरण के द्वारा शंकराचार्य जी ने स्पंद की। और आगे दूसरे श्लोक में शिव भक्ति का फल बता रहे हैं, शिव भक्ति, तो उसको फिर कल देखेंगे। है हाँ, तो एक बात आज हमारे चिमन भाई जी कह रहे थे और सुबह भी कुछ माताएं कह रही थी कि बरसात ऋतु शुरू हो गया, बरसात शुरू हो जाने के कारण सायंकाल 7:30 बजे तक प्रवचन रखने पर माताओं को विशेष करके घर पहुंचना होता है, ट्रांसपोर्टेशन की फिर तकलीफ होती है, बारिश होता है तो 6 बजे तक ही रखे, 5:30 से 6 बजे तक, सॉरी 5:30 से 7 बजे तक रखें, तो आधा घंटा पहले कम करें, ये प्रस्ताव सुबह आया था। तो शायद इसी के आधार पर सभी को सुविधा हो, इसके लिए कल से ठीक 7 बजे पूरा करेंगे। आज हमने 7:30 भी नहीं किया, 7 भी नहीं छोड़ा, बीच में छोड़ा है ना, 7 से ऊपर, 7:30 से पहले बीच में जाकर छोड़ दिया है। तो कल से 7 बजे छोड़ेंगे और इस शिवानंद लहरी सुनते समय बड़ा आनंद आएगा, एक एक भाव ऐसे प्रकट होंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा आओ, और ये 13 दिन का कार्यक्रम, आज एक दिन कम हो गया, तो 12 दिन तक तो अब और भी चलेगा। तो कल से फिर नियमित रूप में प्रेमप्रिय आश्रम ट्रस्ट ने श्लोक को भी फोटोकॉपी करके रखा है, आप लोग साथ साथ पढ़ते भी रहना और हम उसका अर्थ भी करते जाएंगे। और आपको मुझे लगता है स्तोत्र के अनुरूप आनंद आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि शिवानंद है इसलिए आनंद आएगा, उसका तरंग लहर चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।